जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारे, जय गिरिवर धारे, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारे, जय गिरिवर धारे, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारे, जय गिरिवर धारे, जय यशोदा नंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदा नंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदा नंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीर वन चारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीर वन चारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीर वन चारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, 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 जय कुंज बिहारी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिथितीर्थसतां तमन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमत् भागवते कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिके वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। जय श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। श्रीमद्भागवतम आठवां स्कंद है, अध्याय 7 और श्लोक क्रमांक 14 से लेकर 19 तक, 13 से लेकर 18 तक तात्पर्य नहीं है, इसलिए 19 श्लोक को लिया जाएगा। कुछ पढ़ लेते हैं। उपर्यधश्चात्मनि गोत्र नेत्रयः परेण ते प्राविशता समेधितः मम अधुरब्धिं तरसा मदोत्कटा महादृणां चोभितनक्रचक्रमम्। देवता तथा असुर अमृत के लिए मानो मतवाले होकर कार्य कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित कर रखा था। वे पर्वत के ऊपर और नीचे सभी जगह थे और वे देवताओं, असुरों, वासुकी तथा पर्वत में प्रविष्ट हो गए। देवताओं तथा असुरों के बल से क्षीर सागर इतनी शक्ति के साथ विलोड़ित हो रहा था कि जल के सारे मगरमच्छ अत्यंत विचलित हो उठे, तो भी समुद्र का मंथन इस तरह चलता रहा। अहिंद्र साहस्र कठोर द्रक्मुख स्वासाग्नि धूमा हत वर्चसो सुर पौलोम काले बलिलवलादयो दवाग्नि दग्धा सरलाइवा भवन। वासुकी के हजारों नेत्र तथा मुख थे, उसके मुख से धुआं तथा अग्नि की लपटें निकल रही थीं, जिससे पौलोम काले बलि इलवल आदि असुरगण पीड़ित हो रहे थे। इस तरह सारे असुर जो जंगल की आग से जले हुए सरल वृक्ष की भांति प्रतीत हो रहे थे, धीरे धीरे शक्तिहीन होते गए। देवांश तच्छ्वास शिखा हत प्रभान धूमाम्र स्रगवर कंच काननान समभ्य वर्षन भगवत वशा घना बबुह समुद्रोर्मि पगोढ़ वायस वायवः। चूंकि वासुकी की दहती सांस से देवता भी प्रभावित हो रहे थे, अतएव उनकी शारीरिक कांति घटती गई और उनके वस्त्र मालाएं आयुध तथा उनके मुखमंडल धुएं से काले पड़ गए, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से समुद्र के ऊपर बादल प्रकट हो गए और वे मूसलाधार वर्षा करने लगे। समुद्री लहरों के जल के कण लेकर मंद समीर बहने लगी, जिससे देवताओं को राहत मिल सके। मध्यमाना तथा सिंधुर देवासुर वरुथ पये यदा सुधा न जायेत निर्ममंथा जितः स्वयं। जब श्रेष्ठतम देवताओं तथा असुरों के द्वारा इतना उद्यम करने पर भी क्षीर सागर से अमृत नहीं निकला, तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजित ने समुद्र को मथना प्रारंभ कर दिया। मेघ श्यामह कनक परिधे कर्ण विद्योत विद्युन मूर्धने भ्राजत विललित कचह स्रगधरो रक्त नेत्रह जैत्रे दोर्भिर जगत भयर्दय दंद शूकम ग्रहीत्वा मथनन मथना प्रतिगिरिवासो भय भतादो धृताद्रे। श्री भगवान श्याम बादल की भांति दिख रहे थे। वे पीले वस्त्र पहने थे, उनके कान के कुंडल बिजली की तरह चमक रहे थे और उनके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। वे फूलों की माला पहने थे और उनकी आंखें गुलाबी थीं। विश्व भर में अभय देने वाले अपने बलिष्ठ यशस्वी भुजाओं से उन्होंने वासुकी को पकड़ लिया और मंदर पर्वत की मथानी बनाकर समुद्र का मंथन करने लगे। जब वे इस प्रकार व्यस्त थे, तो वे इंद्रनील नामक सुंदर पर्वत की भांति प्रतीत हो रहे थे। निर्मथ्यमानाद उद्धेर भूद्विषम महोल बड़म हाल हलाह मग्रतः संभ्रांत मीनो मकरादि कच्छपात तिमिद्विषग्राह तिमिंगलाकुलात। मछलियां, हांकर, कछुए तथा सर्प अत्यंत विचलित एवं क्षुब्ध थे। सारा समुद्र उत्तेजित हो उठा और व्हेल, समुद्री हाथी, घड़ियाल तथा तिमिंगल मछली जैसे बड़े बड़े जलचर सतह पर आ गए। इस प्रकार से समुद्र मंथन हो रहा था तो इससे सर्वप्रथम हलाहल नामक घातक विष उत्पन्न हुआ। ये 19वां श्लोक है, ये हमारे पीछे आप सभी दोहराइए। तदुग्र वेगम दिस दिशे उपर्यधो विसर्पतुत्सर्पतसह्यम प्रति भीता प्रजह ध्रुवरंगशेश्वरा अरक्षमाणः शरणं सदाशिवम् तदुग्रवेगं दिश दिश उपर्यधो विसर्पतुत्सर्पतसह्यम प्रति भीता प्रजहदु ध्रुवरंगशेश्वरा अरक्षमाणः शरणं सदाशिवम् तदुग्रवेगं दिश दिश उपर्यधो विसर्पतुत्सर्पतसह्यम प्रति भीता प्रजहदु ध्रुवरंगशेश्वरा अरक्षमाणः शरणं सदाशिवम्। तदुग्र वेगम दिश दिश उपर्यधो विसर्ग दुत्सर्पद सहम प्रति तदुग्र वेगम दिश दिश उपर्यधो भीता प्रजादो ध्रुवरंगशेश्वरा अरक्षमाणः शरणं सदाशिवम् तदुग्रवेगं दिश दिश उपर्यधो विसर्ग उत्सर्ग माता जी तत् वह उग्र वेगम अत्यंत भयानक तथा तेज विष दिशि दिशे समस्त दिशाओं में ऊपरे ऊपर अधः नीचे विसर्पत मुड़ता हुआ उत्सर्पत ऊपर जाते हुए असह्यम असह्य अप्रत्यय वश में ना होने वाला भीताः अत्यधिक डरे हुए प्रजाः सारे विश्वों के स्वामी निवासी सारे विश्वों के निवासी दुद्रुवः इधर उधर जा रहे थे अंग हे महाराज परीक्षित सईश्वरः श्री भगवान सहित अरक्षमाणः असुरक्षित शरणम शरणः सदा शिवम शिवजी के चरण कमलों में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की हे राजन, जब वह अनियंत्रित उग्र विष ऊपर नीचे तथा सभी दिशाओं में वेग के साथ फैलने लगा तो सारे देवता श्री भगवान समेत शिवजी सदा शिव के पास गए। अपने आप को असुरक्षित तथा अत्यंत भयभीत पाकर वे सब उनकी शरण मांगने लगे। तात्पर्य, कोई यह प्रश्न कर सकता है कि जब साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वहां उपस्थित थे तो वे सारे देवताओं तथा प्रजा को साथ लेकर सदाशिव की शरण में क्यों गए? उन्होंने स्वयं हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? इस प्रसंग में श्रील माधवाचार्य सावधान करते हैं, रुद्रस्य यशो अर्थाय स्वयं विष्णु विषम विभुः ना संजहे समर्थोपि वायुं चोचे प्रशांतये। भगवान श्री विष्णु स्थिति को संभालने में सक्षम थे किंतु शिवजी को श्रेय प्रदान करने के लिए ही उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। शिवजी ने बाद में सारा विष पी लिया और उसे अपने गले में रख लिया। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रार्थनाएं पहले कर चुके हैं तो सीधे कथा प्रारंभ करेंगे। भगवान की ये अद्भुत लीला है। आप इस अद्भुत लीला को सुनते आए हैं कि भगवान ने इस लीला में अपने षड ऐश्वर्यों को भी प्रकट किया है। भगवान की महिमा का, भगवान के गुणगान का, भगवान की लीलाओं का, उनके ऐश्वर्यों का वर्णन करना ये वैष्णवों की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी के चरण कमलों में हमारा प्रणाम और आपसे अनुरोध है कि हमें आशीर्वाद दें जिससे हम भगवान के कुछ गुणानुवादों का वर्णन कर सकें। तो जैसा आपने सुना कि इस लीला में भगवान ने अपने षड ऐश्वर्यों का वर्णन किया है, तो पराशर जी भगवान के षड ऐश्वर्य बताते हैं। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य सचैव षण्णांग भग इति गणः। भगवान का एक ऐश्वर्य धन, तो धन की देवी लक्ष्मी इसी लीला में बाहर आई, समुद्र से क्षीर सागर से वो निकली लीला के द्वारा। ऐसे तो वो भगवान की शाश्वत संगिनी हैं लेकिन लीला के द्वारा प्रकट हुई और भगवान को उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो ये भगवान का एक ऐश्वर्य है कि धन की देवी रमा भी उनके साथ में रहती हैं। तो सबसे अधिक धन तो भगवान के पास है, रमा जी उनके साथ रहते हैं। यश, और भगवान के यश का ही वर्णन किया गया है इस लीला में कि नीचे भी भगवान हैं। छितिरे विपुल तटे तिष्ठति तव पृष्ठे। तो भगवान ने अपने पीठ में इतना बड़ा मंदराचल पर्वत धारण किया, आप लोगों ने सुना। इस पर्वत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 10,000 योजन। 80,000 माइल ये लंबा है, ऊंचा है और उतना ही चौड़ा भी है। तो भगवान ने 10 गुना शरीर धारण किया। भगवान ने कितना बड़ा शरीर धारण किया? 1 लक्ष योजन। इसका अर्थ है कि 800,000 माइल ऊंचा और 800,000 माइल चौड़ा, इतना विशाल भगवान ने शरीर धारण किया है। और जो डूब गया था, जो पर्वत गरुण जी के द्वारा ही लाया गया था, राक्षस और देवता तो समर्थ नहीं थे, तो ये ऑलमोस्ट डूब गया था, लेकिन भगवान ने उसको अपने पृष्ठ से ऊपर लेकर आए, धारण करके ऊपर लेकर आए। तो ये भगवान का यश ही है। और भगवान ऊपर से भी पकड़े हुए हैं। भगवान अजित अपने सहस्त्र बाहुओं के साथ में प्रकट हुए हैं, है ना? कहते हैं ना कि हरि है हजार हाथ वाला। तो यहां भगवान ने दिखा दिया, हजार हाथ वाले हरि अजित प्रकट हुए और अपने हाथों से पकड़ के रखे थे, दबाए भी थे वो उस पर्वत को कि यहां वहां गिरे ना, हिले डुले ना, ठीक से मंथन कार्य चलता रहे। तो ऊपर से भी पकड़े हैं, नीचे से भी पकड़े हैं। और आज की कथा में आप भगवान सुनेंगे, सुना आपने श्लोक नंबर 13 में कि भगवान सभी के अंदर प्रवेश कर गए उनके गुणों के साथ में भी। तो सर्वत्र भगवान है, तो ये भगवान का यश है। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रकट हुए, फिर से भगवान की स्तुति की। तो इस लीला में भगवान के यश का भी वर्णन किया गया है, सौंदर्य। और भगवान के सौंदर्य के विषय में कहना ही क्या, मानो भगवान बताना चाहते हैं सारे जगत को अपना सौंदर्य। इसीलिए भगवान इसी लीला में मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट होंगे। और भगवान ने ऐसा सुंदर स्वरूप प्रकट किया, इन राक्षसों की तो बात ही क्या है। स्वयं शिवजी भी वो भगवान की इस मोहिनी मूर्ति को देखने की इच्छा प्रकट किए और भगवान की मोहिनी मूर्ति को देख के ऐसे मोहित हुए कि उनका वीर्य स्खलित हो गया। तो ये है भगवान की महिमा। जिन भगवान शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, कामदेव पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन भगवान से वो मोहित हो गए और मुस्कुरा रहे थे, किसी प्रकार से लज्जित नहीं थे शिव जी। वो कहते हैं कि अरे भगवान, मैं आपसे मोहित हुआ हूं, और कौन है इस जगत में जो आपसे मोहित ना हो, कौन है इस जगत में? तो यदि मैं आपकी माया से यदि मोहित हो जाऊं, आपकी योग माया से यदि मोहित हो जाऊं, तो ये मेरे लिए श्रेयकर बात है। तो इस तरह से भगवान ने अपना सौंदर्य प्रकट किया, ज्ञान। और आपने सुना कि क्षीर सागर के तटमर गए थे सारे देवता कि हम क्या करें, सारे असुरगण हमें मार मार कर परेशान कर रहे हैं, तो हम क्या करें? तो भगवान ने बताया कि क्या करना है। तो भगवान हर प्रकार से ज्ञानी हैं और भगवान के ज्ञान का वर्णन भी सारे देवता इत्यादि करते हैं। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में भगवान के ज्ञान का बखान करते हैं कि भगवान में किस तरह से ज्ञान है, वैराग्य। और भगवान में वैराग्य भी है और इसी लीला में भगवान ने अपने वैराग्य का वर्णन किया। तो आप में से कोई बता सकता है कि किस तरह से भगवान ने इस लीला में अपने वैराग्य का वर्णन किया है? आप में से कोई बता सकते हैं कि भगवान का एक ऐश्वर्य है वैराग्य, रिनन्शिएशन। तो भगवान ने किस प्रकार से अपने वैराग्य का वर्णन किया? स्वयं लक्ष्मी जी कहते हैं उन्होंने सब में दोष निकाला, शिव जी में दोष निकाला, ब्रह्मा में निकाला, इंद्र में निकाला, जितने ऋषि मुनि थे सब में दोष निकाला, और भगवान में भी एक दोष निकाला। सभी लक्ष्मी जी की तरफ देख रहे थे, सभी चाहते थे कि लक्ष्मी जी हमारा वरण कर लें, लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान में एक दोष निकाला कि सब मेरा वरण करना चाहते हैं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन मैं इन भगवान का वरण करना चाहती हूँ, लेकिन इनमें एक गलती है कि ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो ये भगवान का वैराग्य है। और दूसरा, समुद्र मंथन स्वयं भगवान ने किया, और किसी ने नहीं, स्वयं भगवान ने किया। समुद्र मंथन से अमृत निकला तो भगवान ने नहीं पिया, मोहिनी मूर्ति के पास था, भगवान के पास वो अमृत आ गया था। चाहते तो सबसे पहले थोड़ा पी लेते, या अदृश्य होने के पहले, गरुड़ में जाने के पहले थोड़ा पी लेते, ले जाते, लेकिन भगवान ने सारे देवताओं को, सभी देवताओं को अमृत पिलाया, लेकिन स्वयं अमृत नहीं पिया। तो ये भी एक तरह से भगवान का वैराग्य है। ऐसे तो भगवान को किसी अमृत की आवश्यकता नहीं है। ये अमृत किन के लिए है? ये मरे लोगों के लिए है, मृत जो लोग मर रहे हैं उनके लिए है। भगवान तो सत्य हैं। सत्य का अर्थ होता है कि जो भूत वर्तमान और भविष्य में सदैव एक समान रहे उनको सत्य कहा जाता है। तो भगवान अनादि काल से यौवन में प्रवेश कर रहे हैं, अभी प्रवेश किए नहीं है, प्रवेश कर रहे हैं। तो इतने यंग, इतने यूथ हैं भगवान। तो भगवान को किसी प्रकार के अमृत की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। तो इस लीला में भगवान ने अपने षड ऐश्वर्य को प्रकट किया है। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरह से इतना बड़ा सोने का मंदराचल पर्वत लेकर आया गया और एक स्थान में डाल दिया गया, इस क्षीर सागर में, और उसके बाद वासुकी को रस्सी बनाया गया। ये वासुकी तैयार कैसे हो गए? तो ये भी तो बुद्धिमान है, ये भी तो शेषनाग जी के छोटे भैया हैं, इनके भी हजार मुख हैं, तो इनकी भी बुद्धि है। शिव जी का संग करते हैं, शिव जी के गले में पड़े रहते हैं, तो इनको इतना तो मालूम है कि जब खींचा जाएगा तो इनका कचूमर निकल जाएगा। तो ये तैयार कैसे हो गए? इनको भी लोभ दिया गया था कि जब अमृत निकलेगा तो तुम्हें भी अमृत मिलेगा, तो इस लोभ से ये भी तैयार हो गए कि हम भी अमर हो जाएंगे। और फिर एक तरफ असुर थे, एक तरफ देवता। भगवान प्रारंभ में मंथन नहीं कर रहे थे, भगवान आए जरूर थे देवताओं को बचाने के लिए, और आकर आपने सुना कि मुखारबिंद के पास में खड़े हो गए। तो असुर वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं सदैव, कि हम कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, हम बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ये पूछ नहीं पकड़ेंगे, ये जहां से मलमूत्र निकलता है इस स्थान, हम भी वेद अध्ययन किए हैं, हमारे पास भी बहुत बल है, हमारे पास भी तेज है, शक्ति है। अरे हमारे गुरुदेव कौन है? शुक्राचार्य जी हैं, और शुक्राचार्य जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, शुक्राचार्य जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका नाम श्रीमद् भगवद गीता में आया है। अब जान लीजिए कि अगर श्रीमद् भगवद गीता में किसी का नाम आ जाए तो वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो क्या आया है भगवद गीता में? कवि नाम उष्णा कवि। ये उष्णा, ये शुक्राचार्य जी का एक नाम है। तो भगवान कभी कभी बात करते हैं युधिष्ठिर महाराज से, या हस्तिनापुर की सभा में, यहाँ वहां बात करते करते शुक्राचार्य जी की नीति को कहते हैं। तो हम शुक्राचार्य जी के शिष्य हैं, इतने बड़े व्यक्ति के शिष्य हैं, अरे हम पूछ के पास खड़े नहीं होंगे। तो भगवान तो यही चाहते थे, तो तुरंत भगवान पूछ के पास चले गए, और देवताओं ने आके पूछ पकड़ लिया, और इसके बाद अजित भगवान दूर चले गए। वो उस समय मंथन नहीं कर रहे थे अजित भगवान। फिर ये मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ, घरड़ 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 मथा जाने लगा। तो जब आप लोगों ने तो देखा होगा कि दही को भी मथा जाता है, मंथन किया जाता है जब दही का भी, तो किस तरह जाती है और किस तरह से तो दही है वो यहां वहां घूमता है, उसकी लहरें किस तरह यहां वहां घूमती हैं। तो इतने बड़े क्षीर सागर में 80,000 माइल का इतना बड़ा पर्वत, और उसी के अनुसार वासुकी ने भी कितना बड़ा स्वरूप लिया होगा। ऐसे तो वासुकी छोटे स्वरूप में रहते हैं शिव जी के गले में, लेकिन अब बड़ा स्वरूप लिया होगा उन्होंने, बहुत बड़ा, 80,000 माइल के पर्वत में लपेटा गया होगा, तो 2-3 बार तो लपेटा गया होगा, तो कितना बड़ा उन्होंने स्वरूप लिया होगा। तो ये सब सिद्धियां होती हैं, जन्म से ही होती हैं कुछ कुछ देवताओं के पास में या बड़े लोगों के पास में। तो कद्रु के पुत्र वासुकी जी, जैसे हनुमान जी के पास जन्म से ही सिद्धि थी, बढ़ रहे थे वो खाने के लिए, किसको? लाल फल को, सूर्य को खाने के लिए। तो जैसे जैसे पास जाते थे उनका आकार भी बढ़ता जाता था। तो यहाँ पे बड़े वासुकी की आवश्यकता थी, तो बहुत बड़ा स्वरूप धारण किया होगा, और बहुत बल से इन असुरों के हाथ पैर ये बहुत विशाल होते हैं, बहुत शक्तियां होती हैं, तो बहुत शक्तियों से ये दानव खींच रहे थे और देवता भी उसी प्रकार से शक्तिशाली हैं। तो एक तरफ से देवता खींच रहे थे, एक तरफ से दानव खींच रहे थे। तो वासुकी का तो कचूमर निकल गया, मानो वो मरने वाले थे, मुख से वो विष उगल रहे थे, जितना भी विष अंदर है वो सब बाहर आ रहा था। तो किस रूप में आ रहा था? धुएं के रूप में, अग्नि के रूप में बाहर आ रहा था। तब भगवान ने देखा ये जितने भी असुरगण हैं, देवता हैं, इनकी शक्ति चली गई है और समुद्र से अभी तक कुछ नहीं निकला। बहुत सारी औषधियों को डाला गया था, लताओं पताओं को डाला गया था कि अमृत निकले, लेकिन अभी से शक्तिहीन हो गए और कुछ नहीं निकला। तो भगवान उनका स्वभाव लेकर उनके अंदर प्रवेश कर गए। पहले तो भगवान सहस्त्राक्ष प्रकट हुए, सहस्त्र भुजाओं के साथ में। सत्व गुण में भगवान देवताओं में प्रवेश किए, क्योंकि वे सत्वगुणी होते हैं। जितने भी देवता हैं वे सत्वगुणी होते हैं, तो उनके अंदर भगवान सत्वगुण में प्रवेश कर गए। राक्षस वो तमोगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं, तो रजोगुण में राक्षसों के अंदर प्रवेश कर गए। तो उसी गुण से उनमें बल आ गया और वो तेजी से मंथन करने लगे, देवता और राक्षस। और इसके साथ साथ भगवान कहाँ प्रवेश किए? वासुकी में भी प्रवेश किए, तमोगुण में। तो वासुकी के अंदर तमोगुण में क्यों प्रवेश किए? तमोगुण में लोग क्या करते हैं? बहुत अधिक सोते हैं, निद्रा। तुम निद्रा रूप में प्रवेश कर गए वासुकी के अंदर कि कष्ट तो होगा इनको बहुत अधिक, है ना? ऑपरेशन करने के पहले क्या दे दिया जाता है जी? एनेस्थेसिया दे दिया जाता है, क्यों? नींद आ जाए। तो भाई काटा पीटा जाएगा तो फिर उनको पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह से वासुकी नाग को उन्होंने निद्रा रूप में भगवान प्रवेश कर गए उनके अंदर कि ये थोड़ा थोड़ा सो जाए, तो इन्हें दुख का आभास, दुख तो होगा लेकिन दुख का आभास नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत तीव्रता से घुमाया जा रहा था, घुमाया जा रहा था। और पर्वत के अंदर भी भगवान प्रवेश हुए, क्यों? इतनी तीव्रता से घुमाया जा रहा है और ये कहीं टूट जाए, ये बड़े शक्तिशाली हैं देवता दानव, अगर टूट जाएगा पर्वत तो क्या होगा? तो फिर कैसे मंथन कार्य होगा? मथाने को भी ठीक ठीक रखना है, तो पर्वत के अंदर भी प्रवेश कर गए। लेकिन इतना भगवान को काफी नहीं लगा, तो भगवान एक हाथ से पकड़े थे ऊपर से और दो भर्याम कई हाथों से पकड़ लिए थे। सहस्राक्ष रूप में प्रकट हुए तो कई हाथों से उस मंदराचल को भगवान बढ़िया से पकड़ लिए थे कि यहां वहां गिरे ना और हिले नहीं। अब कच्छप जी की जो पीठ है, जो सेल है ऊपर की, वो बड़ी चिकनी है, कहीं इधर उधर गिर गए तो कौन उठाएगा? कितना मुश्किल है इतने भारी पर्वत को उठाना। तो इसीलिए भगवान उसे पकड़े भी थे और अब घुमाया जा रहा था। तो घुमाने से क्या हुआ? देवांश, तो पहले कहा गया है कि बड़े बड़े राक्षस, जो राक्षस मुख के पास में थे, कौन कौन था मुख के पास में? तो पौलोम कालेय, पौलोम के पुत्र, कालेय के पुत्र, और इसके साथ साथ बलि महाराज और इलवल, ये बड़े बड़े शक्तिशाली राक्षस पास में। तो कुछ में तो बड़ा अभिमान था कि नहीं, हम तो सीधे मुख के पास पकड़ेंगे, हम बहुत शक्तिशाली हैं। और बलि महाराज ये सोचकर मुख के पास थे कि दूसरे राक्षस थोड़ा दूर पकड़ें तो उनको कष्ट ना हो। अब ये सारे राक्षस आ गए थे पकड़ने के लिए, तो बलि महाराज क्या कहते? वो भी असुरों के राक्षस हैं, असुरों के सेना नायक हैं, असुरों के राजा हैं, तो वो भी आ गए कि ठीक है चलो हम पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। इतने सारे लोगों को उनको भी खुश रखना है, नहीं तो बलि महाराज के पास बहुत ज्ञान है। किसके शिष्य हैं बलि महाराज? प्रथम शिष्य किसके हैं? प्रहलाद महाराज के। बार बार कहते हैं कि मैं प्रहलादी हूँ, मैंने प्रहलाद जी से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। तो बहुत विद्वान है, उनके पास भी बहुत ज्ञान है, लेकिन आके पकड़ लिए, ठीक है। और वहीं पास 1000 मुखों से विष निकल रहा था। किस रूप में? धुएं के रूप में और अग्नि के रूप में। तो इन राक्षसों का शरीर तो पूरा काला हो गया और आंखें अंदर धस गईं। और एक तो मंथन का कष्ट था और दूसरा कष्ट था इस विष का। तो विष के कारण वो सब निस्तेज हो गए, उनके शरीर का तेज भी चला गया और शक्ति भी चली गई। अब किसी रूम में बहुत बहुत साइनाइट रखा हुआ है, ना फैन चल रहा है, तो क्या होगा? कोई उस रूम में है तो विष के पास रहने से, इतने खतरनाक विष के पास रहने से कोई नष्ट हो सकता है। तो वासुकी भी बहुत खतरनाक सर्प हैं, तो इनके मुख से ये अग्नि की लपटें निकल रही थी। और ये अग्नि की लपटें कहाँ तक पहुंची? देवताओं के पास भी पहुंची, देवता भी काले हो रहे थे। तो यहाँ पे विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि धूम्र अंबर स्रगवर कंचुक आननाम। तो आननान, उनके आनन, उनके मुखारविंद काले पड़ गए। वो जो माला पहने हुए थे अच्छे अच्छे श्रगवर, तो ये भी माला सूख गई। और अंबर जो वस्त्र पहने हुए थे वो भी काले पड़ गए। कोई अस्त्र आयुध उनके पास नहीं था, क्योंकि मित्रता करने गए थे पहले असुरों से, तो कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं गए थे। और वहीं से जैसे ही असुरों ने सुना कि अमृत उत्पन्न करना है, तो बोले कब चलें? अरे अभी चलो, अभी चलते हैं मंदराचल को उठाने, तो उसी समय निकल गए थे। तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, हो सकता है कोई कटारी वटारी पास में रखी होगी छोटी मोटी, लेकिन कोई अस्त्र इत्यादि नहीं थे, लेकिन वलय इत्यादि पहने हुए थे। तो ये सब काले हो गए। तो जब ये सब काले हो गए, राक्षसों को जब कष्ट हुआ तो भगवान ने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब देवताओं को कष्ट हुआ, तो देवता क्योंकि बार बार भगवान अजित की तरफ देख रहे थे कि हे भगवान, अब तो हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, पहले से ही शक्ति नहीं है, हमने अपराध किया। किसके चरणों में अपराध हुआ था? दुर्वासा जी के चरणों में अपराध हुआ था, तो वैसे ही हमें शक्तिहीन कर दिया गया है। दुर्वासा ऋषि के चरणों में अपराध होने के कारण हम शक्तिहीन हुए, और मार मार के इन असुरों ने पहले ही हमें शक्तिहीन कर दिया है, और अब ये मंथन कार्य में हम शक्तिहीन हो गए हैं, और उसमें ही इतने विषैले सर्प के मुख से ये विष निकल रहा है, तो अब हमारे अंदर शक्ति नहीं है, थोड़ी भी शक्ति नहीं है। तो देख रहे थे करुणा के भाव से। ब्रह्मा जी कहते हैं ना कि जो भक्त करुणा के भाव से देखता रहता है भगवान की तरफ, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, भगवान आ जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए तुरंत। तो तुरंत भगवान ने वर्षा कर दी, घनघोर वर्षा होने लगी, बादलों ने भगवान की इच्छा को जानकर वर्षा की, और समुद्र की लहरें भी हवा के साथ में पानी के कणों को लेकर आकर, समुद्र की लहरों में से जो कण ऊपर निकल रहे थे, बूंद जो ऊपर निकल रही थी, तो हवा उन कणों को लेकर आकर, हवा उन कणों का आलिंगन करके और ये देवताओं के शरीर में पहुंचाती थी। कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान ने क्या पक्षपात किया? अरे वो असुर भी तो बेचारे मंथन कर रहे थे, तो केवल देवताओं के ऊपर वर्षा की, असुरों के ऊपर वर्षा नहीं की, ऐसा क्यों? क्या कारण है? आप लोग तो कहते हो प्रभु जी कि भगवान तो संभाव हैं, भगवान तो सबके प्रति समान भाव रखते हैं, लेकिन यहां ऐसा क्यों? आप लोगों के हृदय में करुणा का भाव जागृत हो सकता है असुरों के लिए, लेकिन ये वही असुर हैं जो गैयों को खा जाते हैं, जो ब्राह्मणों को खा जाते हैं, देवताओं को खा जाते हैं, निगल जाते हैं, सीधे खा जाते हैं। अरे जो भगवान के प्रेमी ब्राह्मणों को और गायों को खा जाते हैं, भगवान क्यों करुणा करेंगे? स्पेशल करुणा उनके ऊपर क्यों करेंगे? ऐसे तो भगवान दे रहे हैं, हवा पानी ऑक्सीजन सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन भगवान विशेष कृपा उनके ऊपर क्यों करेंगे? और इस समय भी जब वो मंथन कर रहे हैं, तो उनके हृदय में भाव क्या है? उनके हृदय में भाव ये है कि कब अमृत निकले, और अमृत निकाल के जैसे ही अमृत निकलेगा, अमृत को चुरा लेंगे, अमृत को पी जाएंगे और इन देवताओं का वध कर देंगे। और विष्णु को भी देखते हैं, इसी विष्णु के बल से ये बड़े चढ़े हैं ना, उनको भी देखते हैं, अमृत पी लेंगे तब तो हम मरेंगे नहीं, तो हम सबका वध करेंगे। तो ये भाव है उनके हृदय में, ऐसा भाव है राक्षसों के हृदय में, इस भाव से वो मंथन कर रहे हैं। लेकिन देवता भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा, मंथन करते करते भगवान को देख रहे हैं, तो भगवान ने एक विशेष करुणा करके वहां पर उनके ऊपर वर्षा की, पुनः सब में बल आ गया। तो मथ्य मानात तथा सिंधुर देवासुर वरुत पे यथा सुधा न जायत, लेकिन इसके बाद भी सुधा नहीं, बाहर अमृत नहीं निकला। यथा सुधा न जायत, तो भगवान ने निर्णय लिया, भगवान ने अपने मन में ऐसा सोचा कि मैं स्वयं मंथन करूंगा। और भगवान अपनी दो भुजाओं से मंथन करने लगे। भगवान ने वासुकी को पकड़ लिया और वासुकी को पकड़ के भगवान क्या करने लगे, घरड़ 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 घरड़। तो मंथन कार्य अब कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। तो जब देवता राक्षस बहुत शक्ति के साथ मंथन कर रहे थे, थोड़े बहुत मगरमच्छ वो ऊपर आए कि क्या चल रहा है ऊपर। जब सागर विक्षुब्ध हुआ तो वो भी ऊपर आए, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब भगवान ने मंथन प्रारंभ किया तो पूरा का पूरा समुद्र क्षीर सागर वो विक्षुब्ध हो गया। अंदर से इतनी भयंकर लहरें अंदर और बाहर उठने लगी कि अंदर के जितने भी जीव थे जो अंदर रहते हैं जल के अंदर, जैसे व्हेल मछली, बड़ी बड़ी शार्क, बड़े बड़े मगरमच्छ, समुद्री हाथी भी होते हैं, तो समुद्री हाथी और उसके साथ तिमिंगल, तिमिंगल भी ऊपर आ गए। तिमिंगल किनको कहा जाता है, जो व्हेल मछली को भी निगल जाए। अरे व्हेल मछली का वजन 30 हाथी के बराबर होता है। कितनी बड़ी व्हेल मछली होती है, 30 हाथी के बराबर वजन होता है। और ऐसी व्हेल मछली को जो तिमिंगल निगल जाए, जो मछली निगल जाए, बड़े बड़े जानवर निगल जाए, उनको तिमिंगल कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि महाभारत की वॉर में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब तिमिंगल थे। ये कितने भी बड़े बड़े महारथियों को परास्त कर सकते थे अकेले, और उनके गुरु भी उनसे नहीं जीत पाए थे, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं, वो भी नहीं जीत पाए थे। तो दूसरों की बात ही क्या की जाए, दूसरे कैसे जीत सकते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से अर्जुन ने सबको जीत लिया। तो ऐसे तिमिंगल भी बाहर आ गए। दूसरा कारण क्या है तिमिंगल के बाहर आने का, जब कुछ अनुचित होने वाला होता है, जब कहीं सुनामी आने वाली होती है, जब कहीं बहुत बड़ा भूकंप आने वाला होता है, तो सबसे पहले किसको पता चलता है, जीवों को पता, जानवरों को पता चलता है। तो अब क्या होने वाला है, हलाहल विष बाहर निकलने वाला है, बहुत भयंकर विष। दो विष फेमस है इस संसार में, एक विष है अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट नाम का विष बड़ा फेमस है, जिसको पूतना अपने स्तनों में लगाकर आई थी। और दूसरा विष कौन सा फेमस है, हलाहल। ये भी एक रत्न माना गया, 14 रत्न जो समुद्र से निकले, उस रत्नों में एक है हलाहल, इसको भी रत्न कहा गया है। तो पहला रत्न ये हलाहल विष निकला था। तो हलाहल निकलने वाला है और हलाहल का कोई तोड़ नहीं है। हलाहल इतना खतरनाक विष है कि इससे सभी, पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो सकता है ना। तो ये जैसे कि कोरोना है ना, कोविड, तो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, दिखाई नहीं देता लेकिन पूरे ब्रह्मांड को। तो ये भी धुएं के रूप में चारों तरफ फैल रहा था पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन ये सब कुछ नष्ट कर सकता था। तो ये बाहर आने वाला था, इसलिए सबसे पहले किसको पता चला, जानवरों को पता चला। तो वे विक्षुब्ध होकर बाहर आ गए, देखने लगे कहां भागें, कहां भागें, देखने लगे। और भगवान ने जब मंथन किया तो सबसे पहले अशुद्धि बाहर निकलती है, तो क्या बाहर निकला, हलाहल नाम का विष बाहर निकला। भगवान के विग्रह का भी वर्णन किया गया है कि भगवान किस प्रकार से सुंदर लग रहे थे, लेकिन बहुत अधिक समय नहीं है तो हम 19वें श्लोक में आते हैं, केवल 10 मिनट ही बचा है, तो 19वें श्लोक की व्याख्या करते हैं। तदुग्र वेगम दिस दिस उपर्यधो वित्सर्प उत्सर्पत सह्यम प्रति भीता प्रजा दुद्रवुरंग शेश्वरा अरक्षमाण शरणम सदा शिवम। तो जैसे ही ये हलाहल नाम का विष निकला, इसको हलहल भी कहा जाता है, हलाहल भी कहा जाता है और हलहल भी कहा जाता है। तो जब ये विष निकला, जैसे ही बाहर निकला, तो इस सभी दिशाओं में तदुग्र, उग्र है, बहुत खतरनाक विष है, बहुत भयंकर डेंजरस विष है, और ये सभी दिशाओं में फैलने लगा, दिशी दिशी सभी जगह फैलने लगा, बहुत तेजी से फैलने लगा। तो ऊपरी और अधः, ऊपर भी फैला और अधश्च नीचे भी गया, सब जगह शीघ्रता से, इतनी शीघ्रता से फैलने लगा कि देवताओं को समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें। अरे सामने तो भगवान अजित खड़े थे। अभी जब आप पढ़ेंगे आगे के अध्यायों में कि देवासुर संग्राम हुआ, तो देवासुर संग्राम में ये अमृत पीने के बाद भी ये सारे के सारे देवता मारे गए थे, तो किसकी शरण लिए थे? भगवान की शरण लिए थे। भगवान प्रकट होके फिर सबको जीवित कर दिए, सबकी रक्षा किए। तो लेकिन यहां पर भगवान सामने अजित खड़े हुए हैं, लेकिन सब भाग के कहां गए? शिव जी के पास में गए, क्योंकि जानते हैं देवता कि शिव जी तो अपने शरीर में नागों को लिपटाए रहते हैं, तो वो इस विष के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। तो सामने भगवान हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान मुस्कुरा रहे थे, और ये सारे देवता कहां भागे? शिव जी के पास भागे, शिव जी के नजदीक गए। तो जब ये मंथन का कार्य चल रहा था, तो शिव जी, इंद्र और जितने भी ब्रह्मा जी इत्यादि हैं, बड़े बड़े ऋषि, ये ऊपर खड़े होकर स्तुति कर रहे थे और फूल भी बरसा रहे थे। तो पास में ही शिव जी हैं, शिव जी पास में हैं तो फिर कैलाश पर्वत में क्यों गए, एक प्रश्न उठता है। और इंद्र यदि मंथन कर रहे हैं तो ऊपर से इंद्र फूल कैसे बरसा रहे हैं? तो इनमें इस प्रकार का गुण होता है कि ये कई रूपों में अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कैलाश में भी हैं, लेकिन ऊपर से भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का गुणगान गा रहे हैं। तो कैलाश में गए शिव जी की स्तुति करने के लिए, जल्दी से भाग कर गए सारे देवता। और अब देवता भाग रहे थे तो असुरों को तो पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, तो ये देवता ये सही जगह जा रहे होंगे, तो अनुसरण करके वो भी, दानव भी, दैत्य भी उनके पीछे पीछे शिव जी के पास गए। और जब भगवान ने सोचा कि चलो ये जा रहे हैं, तो चलो हम भी, वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव अपने भक्त शिव जी का दर्शन कर लेते हैं, तो वो भी पीछे पीछे हो लिए। तो यहाँ पर मध्वाचार्य जी ऐसा कहते हैं कि रुद्रस्य यशसो अर्थाय स्वयं विष्णुर विषम विभु ना संजहे समर्थोपि वायुं चोचे प्रशांतये। भगवान विष्णु, भगवान अजित, वो तो हर प्रकार के विष को नष्ट कर सकते हैं, समर्थ हैं इस हलाहल विष को नष्ट करने में, फिर सारे देवता शिव जी के पास क्यों गए? भगवान चाहते थे कि मेरे भक्तों की महिमा आगे बढ़े, मेरे भक्त महिमा मंडित हों, ये भगवान चाहते थे। भगवान जी को शिव जी की याद आ गई कि ये भी 14 रत्न में से एक रत्न है, तो बेकार कैसे जाए? अगर शिव जी पियेंगे तो ये शिव जी का आभूषण बन जाएगा। जब शिव जी ने हलाहल को पिया तो शिव जी का क्या नाम प्रसिद्ध हुआ? नीलकंठ। और एक और क्या निकला था? चंद्रमा भी निकला था इसी समुद्र में से। तो चंद्रमा को जब शिव जी ने धारण किया तो उनका एक नाम हुआ चंद्रमौली। यदि विष नहीं धारण करते तो चंद्रमा कैसे धारण करते? भगवान ने सोचा कि विष के प्रभाव से इनका शरीर गरम गरम हो गया होगा, तो ठंडा ठंडा चंद्रमा इनके सिर में लगा देते हैं, तो उसकी ठंडक से ये ठीक हो जाएंगे, उसकी शीतलता से ठीक हो जाएंगे। शिव जी को एक आभूषण के रूप में प्रदान कर दिया विष। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये शिव जी तो विष पीते हैं, तो शिव जी को ऑफर करके वो लोग शराब भी पीते हैं और गांजा भी पीते हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि अगर शिव जी ने तो जहर पिया है, तो एक लोटा जहर उनको दे देना चाहिए कि एक लोटा जहर पी लें, है ना, तब माना जाएगा कि वो परम शिव भक्त हैं। लेकिन खुद को पीना है गांजा, खुद को पीना है शराब, तो शिव जी को बदनाम करके और वो अपना काम चलाते रहते हैं। सो शिव जी ने वास्तव में जहर पिया था, और कोई साधारण जहर नहीं पिया था, है ना, कि धतूरा से निकाल के पी लिया हो, ये कौन सा, ये हलाहल जहर पिया था, सबसे भयंकर विष पिया था। तो भगवान शिव जी को महिमा मंडित करना चाहते हैं, अपने भक्त की यश को बढ़ाना चाहते हैं। भगवान को क्या जरूरत थी अपना पैर बढ़ाने की और भीख मांगने की बलि महाराज से, चाहते तो किसी भी रूप में जाते और बलि महाराज का सर काट सकते थे, लेकिन बलि महाराज जी के यश को बढ़ाना चाहते हैं। आगे की कथा में आप सुनेंगे इसी स्कंद में। तो भगवान उनसे जाके भिक्षा मांगे, क्यों? उनके यश को बढ़ाना चाहते थे। भगवान जानते थे कि प्रहलाद महाराज के शिष्य हैं तो ये आत्मसमर्पण करेंगे और तब से ये क्या हो जाएंगे, महाभागवत हो जाएंगे। तो उनके यश को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए वो जाके उनसे वामन देव जी के रूप में भिक्षा मांगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि जब नरसिंह देव जी ने अवतार लिया तो ब्रह्मा जी ने कहा, लक्ष्मी जी आप शांत कीजिए, आप तो होम मिनिस्टर हैं, आपकी बात मानेंगे तो आप शांत कर दीजिए। लेकिन लक्ष्मी जी भी डर गई। तो लक्ष्मी जी ने क्यों ऐसी लीला की कि वो डर गई? वो भगवान की शाश्वत पत्नी हैं, भगवान उनको अपने हृदय में धारण करते हैं, इस बात को लक्ष्मी जी जानते हैं। सुनहरी रेखा है, सुनहरे रंग की रेखा है, और जानती हैं लक्ष्मी जी कि भगवान उनको हृदय में धारण करते हैं। क्या लक्ष्मी जी शांत नहीं कर सकती थी नरसिंह देव जी को? कर सकती थी, लेकिन फिर वो क्यों नहीं गई पास में? क्योंकि वहां वो प्रहलाद महाराज जी के यश को बढ़ाना चाहती थी कि ये असुर कुल में जन्मा है लेकिन भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, तो इसके यश को बढ़ाना है, इसके यश को मुझे आगे करना है, बढ़ाना है। तो इसी कारण उन्होंने प्रहलाद महाराज को आगे किया और उनको भगवान की प्रार्थना करने दी और नरसिंह देव जी ने उन्हें अपनी गोद में बैठा दिया। तो यहां भी यदि भगवान चाहें तो कहीं किसी को जाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान ने प्रेरित किया सारे देवताओं की बुद्धि को कि तुरंत बिना कुछ सोचे समझे वो कहां गए, शिव जी के पास में गए और शिव जी की वैसी स्तुति की जैसी भगवान की स्तुति की जाती। आप मिला लीजिए, जैसी स्तुति ब्रह्मा जी ने श्वेत द्वीप में जाके क्षीर सागर के तट में भगवान की है, बिल्कुल उसी प्रकार की स्तुति देवता कर रहे हैं शिव जी की। क्यों? विष्णु का अर्थ सदा शिव ही होता है। तो यदि ये जब किसी वैष्णव को प्रणाम किया जाता है तो वैष्णव नहीं फूले समाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि आह तो हमें प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है आशीर्वाद आशीर्वाद, ठीक है। किसी ने प्रणाम नहीं किया तो फिर नाराज भी हो गए, रोज प्रणाम करते थे आज नहीं किया, नरक में जाओगे। कभी कभी कुछ लोग ऐसे नाराज हो जाते हैं बाहर के, लेकिन जब प्रणाम किया जाता है वैष्णवों को तो वैष्णव भी प्रणाम करते हैं पलट के। क्यों प्रणाम करते हैं? ये प्रणाम किया जाता है तो उस प्रणाम को क्या वो अपने पास रख लेते हैं? नहीं, वो तुरंत अपने गुरुदेव को दे देते हैं, उनके गुरुदेव उनको, उनके गुरुदेव उनको। और कहां मिल जाता है वो? किसको मिल जाता है? भगवान को मिल जाता है। गुरु पूजा की जाती है गुरुदेव जी के अपीयरेंस में, गुरु पूजा। वैष्णवों की क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। तो वो पूजा क्या ये सोच के अपनी पूजा लेते हैं कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूं और बहुत शिक्षा दे रहा हूं, बहुत लोगों का उद्धार कर रहा हूं, इसलिए आके मेरे चरण पखारिए और मुझे बहुत तरह की ऑफरिंग दीजिए और मैं उसको खाऊंगा? नहीं, कभी कभी बैठे रहते हैं उनके सामने, उनका ग्लोरिफिकेशन किया जाता है। तो वैष्णव तो अपना ग्लोरिफिकेशन लेते नहीं है, सुनते नहीं है, फिर वो कैसे? तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी है, बहुत बड़ा त्याग है गुरुदेव का कि उनके समक्ष उनका क्या ग्लोरिफिकेशन किया जाता है वो सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए नहीं है, वो जानते हैं मेरे लिए नहीं है, वो प्रभुपाद जी को दे देते हैं, प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को दे देते हैं, वो अपने गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु, और अंत में किसको मिल जाता है? भगवान श्री कृष्ण को ऑफर हो जाता है। तो अब जो आप स्तुति सुनेंगे आगे जाके, जिस स्तुति को देवताओं ने किसके लिए किया है? शिव जी के लिए किया है। तो वो स्तुति वास्तव में किसके लिए है? भगवान के लिए है, भगवान को ऑफर की जाती है। शिव जी तो आंखें बंद करके भगवान का भजन करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत अमल पुराण की, श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री राधा श्याम सुंदर जी की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। क्वेश्चन आंसर।